कोई पर का दोष है, कोई संयोग का दोष है, ये कुछ होता ही नहीं। अपना दोष से जीव दुखी है और अपना गुण से जीव सुखी है। अपनी प्रज्ञा का अपराध से जीव दुखी होता है, अपने अज्ञान भाव से जीव दुखी होता है और अपने ज्ञान भाव से जीव सुखी होता है। यानी कि कोई एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कुछ संबंध ही नहीं है, जो अपना प्रकरण वही चल रहा है सर्वण सिद्धान अधिकार में। वही बात श्री गुरुदेव श्री के माध्यम से यहाँ आई और प्रज्ञा का गुण की बात कही तो उसमें गुरुदेव ने अर्थ किया कि प्रज्ञा का गुण माने की ज्ञान की उपयोग रूपी पर्याय, गुण को यहाँ पर्याय कहा जाता है। ऐसा करके श्री गुरुदेव श्री ने वो स्पष्टीकरण किया। और एकत्व सप्तति का प्रकरण का भी एक बहुत अच्छा न्याय आया कि पंच परमेश्वरी है तो वो पंच परमेश्वरी का स्मरण जो है वो व्यवहार कहा जाता है, और निश्चय से अपना शुद्ध स्वभाव में पंच परमेश्वरी पद पड़ा है उसका ध्यान और ज्ञान करके पंच परमेश्वरी तक प्रकट होता है। वो बात भी एक श्री गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छी ली थी। और ये जो प्रश्न चला है तो श्री गुरुदेव श्री ने यहाँ बताया कि एकाग्र होकर दर्शन दान चारित्र को ही और दूसरा कोई विकल्प और चिंता नहीं, दर्शन दान चारित्र का ही ध्यान कर लो, उसका ही ध्यान लगाओ। ऐसा गाथा में दर्शन दान चारित्र का ध्यान लगाओ तो प्रश्न आया कि पर्याय का ध्यान से तो विकल्प आएगा, दर्शन दान चारित्र तो पर्याय है, अगर उसका ध्यान करेंगे तो विकल्प उत्पन्न होगा, ऐसा प्रश्न स्वभाव में आया। तो मुझे गुरुदेव सिंह ने उत्तर दिया कि पर्याय का ध्यान लगाओ, पर्याय का ध्यान ध्यान जो आर्द्रोग ध्यान है वो पर्याय थी, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है वो भी पर्याय है। उस अपेक्षा से आर्द्रोग ध्यान को छोड़कर अपना त्रिकाली कार्य पर दृष्टि कर तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान प्रकट होगा। उस अपेक्षा से धर्म ज्ञान और शुक्ल ज्ञान का ध्यान लगाओ, दर्शन ज्ञान चारित्र का ध्यान लगाओ, ऐसे पर्याय का ध्यान लगाओ ऐसा बोला तो उसका मतलब ऐसा है कि मोड़ा देश से छूट के ज्ञान में आ जा और उससे दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है वो दृष्टि द्रव्य पर जाएगी तो दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय का ध्यान लगा, ऐसा यहाँ कहना है, ऐसा गुरुदेव बोला। तो फिर प्रश्न आया कि पर्याय क्या पर्याय का ध्यान करता है, पर्याय कोई पर्याय का ध्यान करती है तो फिर उसका ध्यान लगाना जरूरी है। तुझे गुरुदेव सिंह ने बोला हाँ, इधर ऐसा कह रहे, इधर ऐसा कहना चाहते हैं गुरुदेव ने ऐसा बोला कि राग का ध्यान छोड़कर उसका ध्यान लगा। तो ये राग को छोड़ के ज्ञान में जीव आता है और पर्याय की इससे सिद्धि करते हैं, और जब दृष्टि का विषय की बात चले तो दृष्टि द्रव्य पर ले जाके समय दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। तो ये पद्धति है। अभी क्या होता है कि राग का निषेध आता है तो जीव सभी का निषेध कर देता है, राग का निषेध करते 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 ज्ञान का निषेध भी चल जाता है। तो ऐसा जिनागम में नहीं आया, क्योंकि गुरुदेव श्री ने उपयोग में वो गाथा चलती थी समर्थ का भी, तो ऐसे ही प्रश्न खेले वहां प्रवचन में। तो वो जानक क्रिया में आत्मा है ऐसी जो वहां चर्चा चलती है कि उपयोग में उपयोग है मगर सदुपयोग तो कायम नामी को भी नहीं देता है, क्योंकि वो तो तीर्थ हो जाता है सदुपयोग से, फिर परिणति रह जाती है, उपयोग विकल्पात्मक हो जाता है, परिणति प्रतीति रूप निरंतर चलती रहती है। तो वो जो विषय चलता था तो वहां भी यही चर्चा आई, क्योंकि गुरुदेव श्री ने ये बात वहां कही कि जानन क्रिया में आत्मा है, जानन क्रिया में आत्मा है, जानन क्रिया में आता है आत्मा है, माने कि करो की क्रिया में राधा की क्रिया में आत्मा नहीं है, ऐसी बात वहां कर रही है। तो वो बोले कि जानन क्रिया से आत्मा अभी नहीं है, जानन क्रिया से आत्मा अभी है वही चर्चा है वहां। तो ऐसे ही प्रश्न चले कि जानन क्रिया से अभी है वो कौन सी नहीं का कथन है, वो निश्चय नहीं का कथन है कि व्यवहार नहीं का कथन है, क्योंकि वहां तो जानन क्रिया तो पर्याय है और त्रिकाली द्रव्य धारण क्रिया में अनन्य है, राग से प्रकट हुआ धारण क्रिया से अनन्य है, तो वो द्रव्य और पर्याय का अनन्य पड़ा कौन सी नहीं का कथन है, ऐसा प्रश्न आया। तो पूज्य गुरुदेव जी ने एकदम जवाब दिया कि वो निश्चय नहीं का कथन है, वो निश्चय नहीं का कथन है, निश्चय नहीं का कथन को द्रव्य का आश्रय द्रव्य की तरफ पर्याय जाए उसको बोला जाता है, मगर वहां धारण क्रिया में आत्मा है वो सिद्ध करना है। तो अधिकार कौन सा चलता है, उसमें गाथा कौन सी चलती है, शास्त्र कौन सा है, अधिकार कौन सा चलता है, गाथा कौन सी चलती है, उसमें सिद्ध क्या करना है, उस अपेक्षा से बातें सब चलती रहती है। वो कोई एक ही बात को पकड़ ले कि दूसरी बात उससे विरुद्ध आ गए तो उसको छोड़ दे, उसका निषेध करे। तो एक बार गुरुदेव ने भी फरमाया, गुरुदेव ने 43 साल तक पूरा प्रकरण सिद्ध किया है, कोई चीज बाकी नहीं रही। तो वो जो उसकी दृष्टि वहां लगी है द्रव्य पर और उसका ज्ञान का ज्ञान में जो उसका स्पष्टीकरण श्री गुरुदेव जी करते रहे हैं, उस अपेक्षा से अपन को चलना पड़ेगा। अपन उस अपेक्षा से उस ऐसे चलेंगे, उसकी पगडंडी से चलना पड़ेगा। ऐसे चलेंगे ना तो मार्ग बहुत सरल है, सर स्पष्टीकरण हो गया। देखो यहाँ भी वही प्रश्न है, पर्याय पर्याय क्या ध्यान करता है कि यहाँ कहते हैं राग का ज्ञान छोड़कर इसका ध्यान कर, ऐसा यहाँ कहना है, पर मगर ये पर्याय का ध्यान करे है करते है तब भी दृष्टि तो द्रव्य ऊपर है। देखो दृष्टि का विषय को सुरक्षित रखिए, पर्याय का ध्यान पर्याय पर रहिए, ऐसी चीज करते हैं। तो ये सब प्रकरण जो आता है ना बहुत समझने लायक होता है, उसकी प्यारे से ध्यान एकाग्रता खाए थे, पर्याय ऊपर नहीं है एकाग्र खाए थे एम नहीं। नहीं तो राजदेश की पाठा वाली विकास की पाठा वाली और इकाई में रहे एम समझाऊ, और इकाई में रहना माने की निर्मल पर्याय की अधिकारी है और त्रिकाली द्रव्य भी अधिकारी है, राग अधिकारी है। तो उस अपेक्षा से वहाँ द्रव्य पर्याय का भेद न देख के दोनों ही अधिकारी है ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। इससे ऐसा नहीं समझ लेना कि वो निर्विकारी पर्याय की प्रथक हो गई है, विकास जैसे प्रथक है, ऐसे ऐसे नहीं होता। निर्विकारी पर्याय भी इसे बोलते हैं कि जिसकी घोषणाएं जैसी होती है कि मैं द्रव्य हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं परमात्मा हूँ, उसी को निर्विकारी पर्याय बोली जाती है। वहाँ अभेद में भेद भाषित नहीं होता, अगर जिसको भेद दिखता है उसको अभेद नहीं दिखता है, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक हाँ, रिंगराम मिश्रा बोल में है 18, 19 और 20 बोल है। 18वां बोल में अर्थाव बोल विशेष वो गोल वाला प्रकरण आया है कि गुणभेद नहीं है आत्मा है। बाद 19वां बोल में ऐसा आया है कि पर्याय द्रव्य में नहीं है, वहाँ त्रिकाली द्रव्य की सिद्धि करनी है। तो वहाँ पे 18वां और 19वां बोल में त्रिकाली द्रव्य की स्थापना करके गुण का भेद और पर्याय का भेद को निकाल के त्रिकाली द्रव्य की सिद्धि की है, दृष्टि का विषय बताना है वहाँ पे। और 20वां बोल जो है वो 20वां बोल है वो पर्याय का है। पर्याय ऐसा देती है कि मेरे को किसी का आश्रय लेना, मेरे को द्रव्य का आश्रय लेना, ऐसी पराधीन में नहीं हूँ, मैं ही द्रव्य हूँ, मैं ही मेरे से शुद्ध हूँ, मैं ही मेरे में परिपूर्ण हूँ, मेरे को किसी का आश्रय हूँ तब मेरी परिपूर्णता हो, ऐसी पराधीन मैं नहीं हूँ, मैं मेरे में मेरे से शुद्ध हूँ, मेरे को किसी का आश्रय की जरूरत नहीं है, ऐसी पर्याय अपनी स्वतंत्रता का संघात भुगती है। मैं ही मेरे में शुद्ध हूँ, मैं मेरे से हूँ, मेरे को स्वीकारी द्रव्य की कोई अपेक्षा हो ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। तो पर्याय अपना सूर प्रदर्शित करती है वहाँ, वो 18, 19 और 20 बोल, वो पूज्य गुरुदेव जी की बार 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 ये बोल, एक अलिग्रह का पहला और दूसरा बोल, इंद्रियों से आत्मा जानता नहीं और इंद्रियों से जानने में आता नहीं, और छठा बोल है कि भगवान आत्मा प्रत्यक्ष जानता है, और 18, 19, 20 बोल में ये गुणभेद नहीं पर्याय भेद नहीं, और पर्याय अपना कामक प्रकट करके मैं ही शुद्ध परमात्मा हूँ ऐसी जयघोष करती है, उसको पर्याय का तत्व बना और पर्याय खुद अपने से स्वतंत्र है ऐसा बोला जाता है। इससे और प्रश्न आया, दर्शन नान चारित्र का ध्यान कर, ऐसा कहा तो ध्यान की पर्याय दर्शन नान चारित्र से जुड़ी है। तो पूज्य गुरुदेव जी ने बोला कि त्रण पर्याय से एक नहीं, त्रण पर्याय से पढ़ते द्रव्य तरीके एक थे, दर्शन ज्ञान चारित्र जो सभी हुआ वो द्रव्य से अलग नहीं रहता, वो द्रव्य तरीके एक हो गए। जिसे आदमी दादा में आया है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त हो वो आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र से प्राप्त हो वो आत्मा नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त हो वो आत्मा। तो वहाँ एका व्यवहार करके निश्चय मिलेगा, इन बातों की दर्शन दान चारित्र की पर्याय अभेद होती है, उसमें कोई भेद नहीं दिखता। इसलिए यहाँ द्रव्य पर्याय का कथन जो आता है ना, उसमें निर्विकारी और विकारी पर्याय पर्याय से भेद करना की विकारी पर्याय पृथक है, निर्विकारी की पर्याय अभेद होती है, ऐसा इसकी कहना चाहते हैं। तो ऐसी बात यहाँ आपकी गुरुदेव जी ने ली है। फिर तो बहुत विषय आया है इसमें, एक घंटे का प्रवचन गुरुदेव का होता है ना, उसका अपन चला लो ना तो वो बहुत टाइम लगे। मूल मूल बात होती है कि पर्याय बिना का कोई द्रव्य नहीं होता है, ये भी बात इसमें बहुत आई है। अभी अपना प्रकरण चल रहा है सर्वविशिष्ट ज्ञान अधिकार से 216 कलश से चलेगा। जैसे 216 कलश और 215 कलश, कलश एक जगह है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें भी वही दृष्टांत है जो अपने कल दिया था, वही दृष्टांत के माध्यम से इसमें बात चलती है। 216 कलश है, शुद्ध द्रव्य स्वरस भवनासी स्वरावश्यते अन्यत् द्रव्यं भवति यन्वादश्यति स्वभाव ज्योत्स्नारूपं सनपयति भुवं नैव तस्यापि भूमि नानं नेयं कलयति तदा नेयं चापि नेव। 216 कलश है, उसमें ये कहना चाहते हैं कि शुद्ध द्रव्य का आत्मद्रव्य का निज रूप स्वभाव में परिणमन होता है, इसलिए क्या शेष कोई अन्य द्रव्य उस दानादी स्वभाव का हो सकता है? अपने ही द्रव्य में अपना शुद्ध परिणमन करता है तो दूसरा वो द्रव्य है, वो द्रव्य उस दानादी स्वभाव का क्या हो सकता है? तो कहते हैं कि नहीं हो सकता। अपना द्रव्य में अपना परिणमन अपने से चलता है, उसमें दूसरा द्रव्य भी कोई अपेक्षा की इससे कोई परिणमन होगा नहीं है। अथवा क्या वह ज्ञानादि स्वभाव किसी अन्य द्रव्य का हो सकता है? कि नहीं, वो ज्ञानादि स्वभाव कोई अन्य द्रव्य मन सुगल द्रव्य द्रव्यों का कभी हो सकता नहीं है। अपना द्रव्य गुण पर्याय अपने में है, अपना द्रव्य है वो अपरिणामी है, गुण भी अपरिणामी है और उसकी पर्याय है वो शुद्ध रूप परिणाम देवी है। तो उसमें अपना द्रव्य गुण पर्याय अपना चैतन्य स्वभाव में है और परता द्रव्य पर्याय सुदगल द्रव्य उसका द्रव्य गुण पर्याय उसमें है। तो परमात्मा के एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ संबंध नहीं है। चांदनी का रूप पृथ्वी को उज्ज्वल करता है, तथापि चांदनी तथापि पृथ्वी चांदनी सदा ही नहीं होती। ये कल्पना में नहीं आता है। चांदनी का रूप पृथ्वी को उज्ज्वल करता है तथापि पृथ्वी चांदनी की सदा ही नहीं होती। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय को सदा जानता है तथापि ज्ञेय ज्ञान का सदा ही होता नहीं। वो ज्ञेय ज्ञान ज्ञेय को ज्ञान सदा जानता है और जो चांदनी है वो पृथ्वी को उज्ज्वल करती नहीं है। तो इसमें ज्ञान ज्ञेय को सदा जानता है, वो सदा कैसे जानता है इसका फल अपन में बहुत विस्तार से देखेंगे। इसी बात की वो प्रतिभाषण कैसे होता है, ज्ञान कैसे जानता है, निराकार कैसे बनते है, ज्ञान की स्वच्छता कैसी होती है, कोई बात वहाँ भावा से ही 216 कलश में है। मैं पढ़ लेता हूँ, फिर अपन थोड़ा उसका चर्चा करते हैं। शुद्ध में इसी दृष्टि से देखा जाए तो किसी द्रव्य का स्वभाव किसी अन्य द्रव्य रूप से ही होगा। जैसे चांदनी पृथ्वी को उज्ज्वल करती है किंतु पृथ्वी चांदनी की किंचित मात्र भी नहीं होती। पृथ्वी प्रथम है, चांदनी प्रथम है, क्योंकि दिन डूब जाता है शाम को जब चंद्र चला जाता है तो वो प्रकाश नहीं देता है, प्रकाश प्रकाशक में चला जाता है और वो जो रोड है वो रोड कैसे ही ले जाता है, पृथ्वी कैसे ही ले जाती है। तो इसलिए चांदनी पृथक है और पृथ्वी पृथक है, वो उसको उज्ज्वल करती है किंतु पृथ्वी चांदनी की किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए वो उसको उज्ज्वल कर सकती नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय को जानता है किंतु ज्ञेय ज्ञान का किंचित मात्र भी नहीं होता। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, इसलिए उसकी स्वच्छता में झलकता है, किंतु ज्ञान में उन ज्ञेयों का प्रवेश नहीं होता। ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि वो कभी ज्ञेय को अपने स्वभाव को मान अपने स्वभाव को ज्ञान कभी छोड़ता नहीं, ज्ञेयों को पर ज्ञेयों को कभी ग्रहण करता नहीं, ज्ञेय में कभी जाता नहीं और ज्ञेय कभी ज्ञान में आता नहीं। तो भी ज्ञेयों का जानना ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान लेकर भी वो ज्ञेय की तरफ न देखते ज्ञान ज्ञान में अपने को देखते ही सभी ज्ञेयों का जानना उसको ज्ञान को ज्ञान ज्ञान में ज्ञान को जानते ही हो जाता है। ज्ञान ज्ञान को ही जानता रहता है, उसी में जो भी बाहर ज्ञेय है वो झलकते है और ज्ञान अपने ज्ञान को जानते ही सभी ज्ञेय का जानना उसको हो जाता है। कोई ज्ञेय की अपेक्षा नहीं होती, कोई ज्ञेय है इसलिए ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अपने में अपने से स्वतंत्रपणे ज्ञान का उत्पाद होता है, वही ज्ञान में जैसे बार ज्ञेय होते है ऐसा ज्ञेय का जानना स्वयं आता है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। वो निरपेक्ष ज्ञान है, उसको किसी की सापेक्ष का लागू पड़ती ही नहीं, ऐसा ज्ञान का स्वतंत्र स्वभाव है। जानना 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 ऐसा ज्ञान का निरंतर स्वभाव रहता है, जाने बिना का ज्ञान रहता ही नहीं और कोई पर पदार्थ को लक्ष्य करके कभी ज्ञान जानता नहीं। ज्ञान अपने में रहते अपनी सत्ता में रहते अपना क्षेत्र न छोड़ते अपना प्रवेश न छोड़ते कोई भी नहीं हो उसका जानना ज्ञान ज्ञान में रहते कर लेता है। उसी को बोला जाता है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है मगर ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते है और ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं है, किंतु ज्ञान में उस ज्ञेय उन ज्ञेयों का प्रवेश ही नहीं होता। वो ज्ञेय तो स्वयं झलकते रहते हैं, अपना वो अपनी जलकन को प्रदर्शित करते रहते हैं, उससे ज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी ज्ञेय झलक जाए वो समय काल में तीन से चौदह भंग आते हैं, चौदह भंग 247 कलश से शुरू होता है परिस्थिति है ना, उसमें इसकी जगह बहुत आई है, बहुत चर्चा आई है उसमें। उसमें ऐसा आया है कि अभी ज्ञान का प्रतिबिंब होता है तो ज्ञान का प्रतिबिंब होता है ज्ञान में, तो कोई ऐसा सोचता है कि ज्ञान में से इसको लुला दे तो मेरा ज्ञान स्वच्छ हो जाएगा, तो मेरा ज्ञान शुद्ध हो जाएगा। अरे भैया वो ज्ञान में प्रतिबिंब उसका है ही नहीं, सच बोल रहा अभी तू किसको निकालेगा, उसको निकालने जाएगा तो ज्ञान ही निकल जाएगा। ज्ञान तो स्वयं ज्ञान रूप है, उसने ऐसा दोष बताया है। चौदह कलश है ये, साल में एक बार ये कलश पूज्य गुरुदेव जी के मुख से ये सुनना चाहिए, इससे बहुत ये विशेष का स्पष्टीकरण, इतना स्पष्टीकरण है। स्वतंत्रता का स्वभाव का स्पष्टीकरण, ज्ञान का जानना कैसे करता है उसका स्पष्टीकरण, ज्ञान का स्वभाव जानने रूप कैसे परिणमता है उसका स्पष्टीकरण, ज्ञेय ज्ञान का आते है कि नहीं, ज्ञेय पृथक रहते भी ज्ञान में ज्ञेय का जानना कैसे हो जाता है उसका स्पष्टीकरण, ये पूरा जगह से सकार भाव नीचे नीचे वो सब चौदह पंक्ति उसमें बहुत अच्छी चर्चा उसने आई है। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, इसलिए उसकी स्वच्छता में ज्ञेय स्वयं झलकता है और किंतु ज्ञान में उन ज्ञेयों का प्रवेश कभी होता ही नहीं। देखो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और जो ज्ञेय है मन की कुंडल है वो उसके स्वभाव में होता है, संयोग है वो उसके स्वभाव में होता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और वो प्रथम द्रव्य है और वो प्रथम द्रव्य है, उसके एक दूसरे का कुछ लेना देना होता ही नहीं है। मगर भ्रांति फर्क क्यों होती है कि ऐसी स्वच्छता डरती नहीं है ज्ञान की, तो स्वच्छता में झलकना बंद नहीं होता है, वो झलकन तो आती ही रहती है, झलकन आती है इसलिए उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे में आ गया ज्ञान, ये मेरे से कुछ फेरफार हो गया, ऐसा नहीं आया है तो ज्ञान में अच्छा हुआ, ऐसा नहीं आया है तो ज्ञान मेरा थोड़ा अशुद्ध हो गया, ऐसी भ्रांति चलती है। दर्पण के सामने अपन खड़े रहे दर्पण के सामने तो वो दर्पण में अपना मुंह दिखाई देता है, अपन खड़े रहते हैं तो अभी दर्पण में मुंह दिखाई देता है तो ये मुंह दर्पण में है कि वो दर्पण का मुंह है,
वो तो दर्पण ही है, ये वो भी उस दर्पण की स्पष्टता को प्रतीत करता है। मगर ऐसा ही ज्ञान वहां देखे उसको ऐसा हो जाता है कि ये ज्ञान में वृद्धि ला गई है, ये ज्ञान में ये चीज प्रवेश कर गई है, प्रविष्ट हो गया है उसका प्रवेश, कुछ होता ही नहीं है, प्रसन्न प्रसन्न चीज है दोनों। ऐसा इसे समझाना चाहते है कि स्वयं जलने पर भी ज्ञान मरीज नहीं होता है, ज्ञान अपनी स्पष्टता खोलता नहीं है और ज्ञान रूप कभी होता नहीं है। नायक और ज्ञान तो पसंद ही पसंद में ही है, इसलिए वो तो कभी जानना उसका छूटता ही नहीं, वो जानने में आ ही रहा है मगर उसको स्वीकार ही नहीं आता है। यदि ज्ञान है वो ध्रुव स्वभाव में से अंश प्रकट होता है, अंशी का अंश होता है, स्वभाववान का स्वभाव प्रकट होता है, वो स्वभाव प्रकट होता है, वो ज्ञान विनायक को कभी छोड़ता ही नहीं, वो प्रथम से अनन्य पना उसका प्रथम से ही चलता है, अभी भी चलता है, अनंत काल तक ऐसा ही चलने वाला है, और इतना ही विनायक और ज्ञान वही स्वभाव होगा, बाकी का सब मेल है वो तो पृथक है। अभी जो गाथा आएगी ना उससे वो स्पष्टीकरण बहुत आने वाला है, 306 से 307 उसमें रमेश ऋषि की गाथा है, उसमें जड़ चेतन की परिभाषा और जड़ चेतन का संबंध क्या है, क्या संबंध वो है, 217 का लक्ष्य है। राग देवे ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोधमायाति भोजनं, ज्ञानं ज्ञानं भवति शरीरं यत्कृत्वा ज्ञानभावं, भावभावो भवति येन पूर्णस्वभावः। ये कहना चाहते हैं कि राग द्वेष का द्वंद्व, राग द्वेष का द्वंद्व तब तक कुले को प्राप्त होता है कि जब तक यह ज्ञान ज्ञान रूप न हो और ज्ञेय ज्ञेयत्व को प्राप्त न हो। राग द्वेष का द्वंद्व माने कि राग और द्वेष की उत्पत्ति वो कब तक चलेगी, कब तक वो राग द्वेष चलता ही रहेगा, कब तक राग द्वेष चलता ही रहेगा। ऐसा कहते हैं कि राग द्वेष का द्वंद्व माने कि तब तक उदय होता रहेगा कि जब तक ज्ञान ज्ञान रूप न हो और ज्ञेयत्व को प्राप्त न हो। लेकिन दोनों की जुदाई जब तक पता नहीं चलती, दोनों की एकत्व बुद्धि जब तक चलती है तब तक राग द्वेष उदित होता ही रहता है, उत्पत्ति होती ही रहती है, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय की तरफ चला जाता है उसी समय राग की उत्पत्ति उसको हुए बिना रहती ही नहीं। ज्ञान ज्ञान में रहता है तो राग द्वेष का उत्पाद होता ही नहीं, और ज्ञेय की तरफ जब जाता है तो नियम से राग उत्पन्न होता ही, अपने को छोड़ के किधर भी चला जाए ज्ञान तो उसमें राग द्वेष का जन्म होता है, और अपने में ही अपने में ज्ञान रहे तो राग द्वेष का जन्म नहीं होता है। राग द्वेष का द्वंद तब तक उदय को प्राप्त होता है कि जब तक यह ज्ञान ज्ञान रूप न हो और ज्ञेयत्व को प्राप्त न हो, इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो। अज्ञान भाव माने कि राग द्वेष जो चल रहा है मोह राग द्वेष, उसको अज्ञान भाव बोला जाता है। ज्ञान का जब तक ज्ञानत्व प्रकट नहीं होता है तब तक ज्ञान का अज्ञानत्व चलता रहता है। बाम प्राण गाथा है समय चाची सत्ता की, इसमें ये बात बहुत अच्छी तरह से आई है कि पर को जब तक आत्मा रूप मानता है ही तब तक ज्ञान का अज्ञानत्व हो जाता है, और अपने को ज्ञान रूप नायक रूप मानने लगता है तो ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट हो जाता है। तो ये अपना पुरुषार्थ से कार्य होता है, क्या मानना और मैं क्या मान रहा हूँ वो अपना पुरुषार्थ उसमें चले कि मैं ये मान रहा हूँ ये मेरी भ्रमणा है, सचमुच में ज्ञेय रूप ज्ञान कभी होता नहीं, ज्ञान ज्ञान को कभी छोड़ता नहीं, ज्ञान चैतन्य का स्वभाव होने से वो चैतन्य स्वभाव ही उसमें बस रहा है, ज्ञेय कभी उससे आते नहीं और ज्ञेय रूप होता नहीं। ऐसा ज्ञेय की सन्मुखता जब टूटती है और ज्ञान ज्ञान में बसता है तब उसको राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है।
इसलिए ज्ञान वेद तो काफी, इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो कि जिससे भाव अभाव यानी कि राग द्वेष को रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाए। ज्ञान जब ज्ञान रूप हो जाता है तब राग द्वेष रुक जाते हैं। अभी इसमें इसके बाद में उदाहरण आने वाली है, उसका ये फर्क है, उसमें सम्यक दृष्टि की चर्चा आने वाली है कि सम्यक दृष्टि कैसे रहता है, उसका कैसा परिणमन होता है। और ये राग द्वेष जो है वो माना कि एक कथा की चौकड़ी तो सम्यक दर्शन होते चली जाती है, बाकी के तीन कथा इसके भी जीवंत रहते हैं। तो यहाँ राग द्वेष रोकता हुआ, राग द्वेष को रोकता हुआ मिथ्या तत्वी राग द्वेष है वो रुक जाता है, ज्ञान ज्ञान में चला जाता है। तो ये फिर से विकल्पात्मक दशा आती है तो अस्थिरता के लिए राग उसमें चालू रहता है। फिर इसमें भावार्थ ये कहे राग द्वेष पूर्ण रुक जाता है तो पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाता है, आंशिक शुद्धि होती है तो वहाँ पूर्ण स्वभाव की प्रगतता नहीं होती है, माने कि पूरी पर्याय लौकिक नहीं होती है तो वहाँ पे फिर से विकल्प आके अस्थिरता ही में राग चालू रहता है, मगर उसका स्वामित्व नहीं होता है ज्ञानी को। भावार्थ जब तक ज्ञान ज्ञान रूप न हो, ज्ञेय रूप न हो, तब तक राग द्वेष राग द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए इस ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो कि जिससे ज्ञान में जो भाव और अभाव रूप दो अवस्थाएं माने कि राग द्वेष की अवस्थाएं होती है वे मिट जाए और ज्ञान पूर्ण स्वभाव को प्राप्त हो जाए, यही प्रार्थना है। अभी ये कलश है ना वो गाथा के ऊपर आए हैं तो अपन गाथा उसकी बोलते हैं, इसमें हिंदी में हरी चीज है उसको पढ़ते हैं साथ में 644 पे लिखते हैं। चारित्र दर्शन ज्ञान किंचित नहीं अचेतन विषय में रहे तुझे आत्मा ज्ञान सके उन्हरिषय चारित्र दर्शन ज्ञान किंचित नहीं अचेतन कर्म में रहे तुझे यह आत्मा ज्ञान सके उन्हरिषय चारित्र दर्शन ज्ञान नहीं जानने के कारण सम्यक दृष्टि को विषयों के प्रति राग नहीं होता,
और राग जैसा भी जड़ विषयों में भी नहीं होते, वे मात्र अज्ञान दशा में प्रवर्तमान जीव के परिणाम है। इस अर्थ की जाता यहाँ यह कर्म करिए। कोई हिंदी में बोलने में चूक हो जाए तो आप सुधार देना। मैं तो गुजराती बोलता हूँ, मगर आप लोगों ने बोला कि हिंदी कहता हूँ, कभी कभी भूल हो जाती है, फिर मेरे को पता चलता है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि कोई भी मोहराज जैसा भी परिणाम हो जीव का, या तो ज्ञान दर्शन चारित्र का भी परिणाम हो, तो वो सब अपना जीव में ही रहते हैं। उज्जवल के साथ झड़ के साथ, माना कि झड़ में वो रहते हैं मोहराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ अज्ञान दशा अज्ञान भाव से ऐसा भाव अपनी ही पर्याय में चलता है, ऐसा होना चाहते थे। जीव और पुद्गल की पृथक पृथक करता है, उसको यहाँ सिद्ध करना है। और जो ऐसी जीव और पुद्गल की पृथक पृथक करता समझ लेता है, उसको वो अपने प्रमाण के द्रव्य में आ जाता है, और फिर उसको पता चलता है कि मेरे ही अज्ञान के कारण ये राग द्वेष मोह हो रहे हैं। अगर मेरा ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो ये मोह राग द्वेष की जगह विकराग का जन्म लेगी, ऐसा ये गाथा में प्रकरण है। फिर उसमें समय दृष्टि हो जाता है, तो समय दृष्टि को राग होता है कि नहीं, और उसको राग होता है तो भी उसका स्वामी तो उसको क्यों नहीं होता है, वो अपने आत्मा में ही क्यों रहता है। और राग इसको एक बार राग को प्रकट करके राग को छोड़ के अपने आत्मा के साथ भेद होकर परिणमन हो गया, फिर उसको राग क्यों आता है, फिर उसको प्रगत क्यों राग आता है। ऐसा राग हो गया, ऐसा राग हो गया, चक्रवर्ती का वर्णन अपन सुने तो अपन को ऐसा लगे ये समय दृष्टि धर्मात्मा होके ऐसा राग का परिणाम इसको कैसे आता रहता है, तो इसमें उस सब स्पष्टीकरण ये गाथा में, यानी कि जड़ और चेतन की पृथकता कैसी होती है, इसका प्रकरण ये गाथा में दिया गया है। और समय दृष्टि उसको कैसे जानता है, समय दृष्टि का परिणाम उस समय ही कैसा रहता है, जब राग की अस्थिरता जनित राग की स्थिति की उपस्थित होती है, तब भी समय दृष्टि की दृष्टि कहाँ है, उसका ज्ञान कहाँ है, और अस्थिरता भी चलती है तो भी वो किस तरीके से उसको जानता रहता है, वो सभी प्रकरण इससे आया है। देखो यहाँ जो अपनी चर्चा पहले दो दिन पहले राग का परिणाम पर्याय होता है, मगर पुद्गल के लक्ष्य होता है, इसलिए पुद्गल का वो विषय अलग है, और यहाँ जो विषय चलता है ये विषय भी अलग है। तो विषय सब जो चलता हो उस अपेक्षा को समझना, क्योंकि राग जो वास्तव में है ना वो तो अपनी पर्याय में ही चलता है। जब तक यथाचार चारित्र नहीं होता तब तक बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक राग रहता ही है, राग कहीं चला जाता नहीं है। निर्विकल्प दशा में भी अबुद्धिपूर्वक राग अंदर में होता है, मगर वहाँ लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य द्रव्य तरफ चला जाता है, तो उसका व्यापार नहीं होता, मगर राग रहता है। इसलिए इस तरीके से इससे समझ लो, इसमें यही कहना चाहते हैं कि वो अज्ञान में परिणमन जीव का ही है, वो पुद्गल का नहीं है, अपने में ही अपनी सत्ता में ही सब हो रहा है, पुद्गल से कुछ संबंध ही नहीं है। जो भी परिणमन है वो अपना है, जो भी त्रिकाल द्रव्य है वो अपना है, गुण है वो अपने है, और परिणमन है वो भी अपना है। मात्र अपनी सत्ता में ही रह के अपने को भेदना करके अपनी मूल सत्ता को पकड़ना है, ऐसे द्रव्य गुण प्रलय का स्वरूप इसलिए बताते हैं कि अपने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि कोई गुण है वो परद्रव्य में है ही नहीं, और पुद्गल के जो भी गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण वो अपने में नहीं है। तो इस अपेक्षा से जीव और पुद्गल की प्रसन्नता सदैव रहती है, सदाई रहती है, कभी वो एक होते ही नहीं है, एक चेतनाओं का दिखते हुए भी वो एक होते नहीं कभी। राग संयोग रूप दिखते हुए भी वो संयोग रूप तो क्यों कहा गया, स्वभाव की अपेक्षा है, मगर वो कोई नमन अपनी पर्याय में चलता है,
ऐसा स्थित लेना चाहते हैं।
ज्ञान और ज्ञान सर्वथा भिन्न है, आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि कोई गुण परिग्रह में नहीं है, ऐसा जानने के कारण सम्यक दृष्टि को विषयों के प्रति राग नहीं होता। सम्यक दृष्टि को विषयों के प्रति राग नहीं होता और राग से जड़ विषयों में भी नहीं होता। सम्यक दृष्टियों को राग नहीं होता विषयों का, और राजेश तो है वो जड़ विषय में नहीं है, ऐसी बात कहना चाहते हैं। ये मात्र अज्ञान दशा में प्रवर्तमान जीव के परिणाम है। सम्यक दृष्टि की अलग चर्चा है, अज्ञान दशा में प्रवर्तमान जो जीव है उसकी अलग चर्चा है। अभी उसकी टीका करते हैं, उसने ऊपर लिखा है राग द्वेष आदि न तो सम्यक दृष्टि आत्मा में है और न जड़ विषय में, वे मात्र अज्ञान दशा में रहने वाले जीव के परिणाम है। जब तक अज्ञान दशा चलती है तब तक अपने परिणाम में राग चलता ही होता है, और राग जैसा न होने से सम्यक दृष्टि आत्मा में राग जैसा भी नहीं है। वो कौन सी अपेक्षा है कि वो दृष्टि अपेक्षा की बात है। दृष्टि अपेक्षा से सम्यक दृष्टि का तो दृष्टि मोक्ष हो गया है। दृष्टि अपेक्षा से सम्यक दृष्टि का तो दृष्टि मोक्ष हो गया है, क्योंकि उसकी दृष्टि द्रव्य पर चली जाती है तो वो दृष्टि कभी वहां से फिर चूज नहीं होती है। इसलिए जब से दृष्टि द्रव्य पर लगी है तब से उसका दृष्टि मोक्ष चालू हो गया है, इसलिए उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तो कहते हैं कि राग जैसा भी न तो सम्यक दृष्टि आत्मा में है और न जो विषयों में, ये मात्र अज्ञान दशा में रहने वाले जीव के परिणाम है। अभी उसकी टीका, वास्तव में जो विषय होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता ही है। जिसमें जो चीज होती है, कोई चीज अपनी चीज है, वो अपनी चीज में अपनी चीज होती है, तो उसका घात होने से वो नष्ट हो जाता है। अर्थात आधार का घात होने पर आधे का घात हो जाता है, जैसे दीपक के घात होने पर उसमें रहने वाले प्रकाश नष्ट हो जाता है, तथा जिसमें जो होता है वह उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। अर्थात आधे का घात होने पर आधार का घात हो ही जाता है। इसमें दीपक का दृष्टांत देके चर्चा शुरू की है, दीपक है, दीपक तो प्रज्वलित रहता है, प्रज्वलित रहता है। अभी वो दीपक का ही नाश हो गया तो प्रकाश तो रहेगा ही नहीं। अब अगर प्रकाश का नाश हो गया तो दीपक रहेगा नहीं। तो दीपक और प्रकाश को आधार आगे संबंध है, अपने में अपनी वस्तु में आधार आगे संबंध होता है, पृथक वस्तु के साथ आधार आगे संबंध कभी हो सकता नहीं है। आधार श्रीकाली द्रव्य और आधेय पर्याय, और कोई जगह के पर्याय को भी आधार बोला जाता है और आधेय द्रव्य को भी बोला जाता है। ऐसे आधार आधेय संबंध अपने द्रव्य और पर्याय के साथ में चलता रहता है। तो जहाँ समझ लो कि आधेय का घात हो गया तो आधार नहीं रहा, और आधार का घात हो गया तो आधेय भी नहीं रहा, ऐसा समझा जाता है। जिसे दीपक के घात होने पर उसमें रहने वाला प्रकाश नष्ट हो जाता है, तथा जिससे जो हो रहा है वह उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। अर्थात आगे का घात होने पर आधार का घात हो ही जाता है, जैसे प्रकाश का घात होने पर दीपक का घात हो जाता है, और जो जिसमें नहीं होता वह उसका घात होने पर भी नष्ट नहीं होता। जिसमें जो चीज ही नहीं है, जैसे उसमें घट नहीं है, जैसे घड़े का नाश होने पर घट प्रदीप का नाश नहीं होता। घड़े का नाश हो गया, घड़े में समझ लो कि दीपक को अंदर रखा, अभी घड़े का नाश हो गया तो वो तो घड़ा तो प्रथम चीज है, उसके साथ कुछ उसका आधार आदि समझ है ही नहीं। दीपक का और उसके प्रकाश का अपने में अपने का आधार आदि संबंध होने पर घड़ा में दीपक को रख दिया तो भी वो घड़े का नाश होने पर दीपक का या तो दीपक के प्रकाश का नाश कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों प्रथक प्रथक चीज है। 67 गाथा में आया है ना, संहिता की 67 गाथा में जीता घड़ा वहां होमा कर दो, वो माटी में है। गीता भरा ऐसा नहीं है, गीता भरा वह माटी में है, जी में नहीं है ऐसा। तो भरे में जी है तो गीता आधार आदि संबंध तो उसके साथ है, घरे में नहीं है उसका आधार आदि संबंध। नीचे है गड़ा गड़ा से, ऐसे यहाँ गड़ा गड़ा से है, दीपक दीपक से है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का आधार आदि संबंध कभी हो ही नहीं सकता। अपने ही परिणाम में आधार आदि संबंध अपना द्रव्य को लगता है। जैसे कोई अन्य द्रव्य टूट जाए गड़ा, तो भी दीपक और उसका प्रकाश की प्रज्वलता कभी छूटती नहीं है। ऐसा इसमें कहना चाहते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र अपने में है और पर में नहीं है। जैसे दीपक का प्रकाश अपने में है और घट में नहीं है, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र वाला आत्मा है वो अपने में है, वो पुद्गल में ज्ञान दर्शन चारित्र भूल नहीं है। ऐसा जैसे प्रकाश का घात होने पर दीपक का घात हो जाता है, और जो दीप में नहीं होता वह उसका घात होने पर भी नष्ट नहीं होता। जैसे घड़े का नाश होने पर घट पर दीप का नाश नहीं होता, तथा दीप में जो नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। जैसे घट पर दीप का घात होने पर घट का नाश नहीं होता, अभी उसमें दीपक प्रज्वलित है, अभी वो समझ लो कि हवा आने से वो दीपक बुझ जाए, तो भी गला का टूटता नहीं है वो गला, वो तो ऐसा ऐसा रहता है गला, क्योंकि उनके दोनों के साथ उनका एक दूसरे का संबंध ही सचमुच में नहीं है। अगर संबंध होता तो वो दीपक है उसका प्रकाश चला जाता तो गला भी टूट जाता। अभी घड़े में दीपक होता, घड़े में अगर दीपक होता, दीपक तो दीपक में है, वो घड़े में नहीं है, गला घड़े में है। अगर घड़ा का नाश होने पर भी दीपक रहता है और दीपक बुझ जाने पर भी घड़ा रहता है, इस तरीके से दोनों की यहाँ पृथकता बताते हैं कि जीव और पुद्गल दोनों पृथक पृथक है। तो दृष्टांत से सीख करते हैं कि सब ये तो सरल बात है, सबको पता ही चलती है। भाई साहब बोलते रहते हैं कि मैं तो मोटी मोटी बात ही करता हूँ। अभी देखो बात होती है कि सूक्ष्म और सरल कुछ होता ही नहीं। अपना उपयोग जब आत्मा में लगता है ना, और आत्मा जब पकड़ में आता है ना, उसी को सूक्ष्मता बोलते हैं। बाकी का सब खूब ही है, कितनी भी सूक्ष्म बात जीव कर ले, कितनी भी चर्चा कर ले, मगर अनुभूति रूप परिणाम जब तक नहीं होवे तब तक कुछ सूक्ष्म है ही नहीं, तब फूल के खाते मिल जाता है। इसलिए जो भी बात चले वो अपना उपयोग कहाँ काम करता है, अपना ज्ञान की डोरी कहाँ अंदर जुड़ी हुई है, वहां से अगर अपने को समाधान होता है तभी पता चलता है कि मेरा शाश्वत तत्व बनाए भाव स्वीकारी ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये ऐसा है, और उसका परिणाम उसे होता है। समझाने के लिए तो सब बातें शास्त्रों में भी आती है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य से पृथक है वो सिद्ध भी किया जाता है, लोग समझ भी रहे हैं, मगर क्या है कि ये समझ के निर्णय की भूमिका और जो प्रयोग करना चाहिए वो जब तक जीव प्रयोग नहीं करता तब तक ये बात कितनी बार भी सुन ले, कितनी बार सुनी होगी ये बात, ये पहली बार थोड़ी कही है, मगर ये बात का निर्णय करके उसको प्रयोग करना चाहिए, ज्ञान में हेर भी करना चाहिए, मेरी वस्तु कौन सी है मेरी वस्तु कौन सी नहीं है ऐसा उसको अंदर से अभिप्राय बनाना चाहिए। जब तक वो अभिप्राय नहीं बनता है तब तक क्या है कि ज्ञान के सर्वोत्तम ज्ञान में तो सब बैठ जाता है, मगर अभिप्राय में कमी ही चलती रहती है। जब ज्ञान और श्रद्धा सुमेर होकर जब चलने लगे तब उसका निर्णय की शुरुआत होती है सच्ची में। ऐसी बात इसमें है, इसलिए जैसे घट प्रदीप का घात होने पर घट का नाश नहीं होता, इस प्रकार से न्याय कहा है। और आत्मा के धर्म दर्शन ज्ञान और चारित्र पुद्गल द्रव्य का घात होने पर भी नष्ट नहीं होते, और दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर भी पुद्गल द्रव्य का नाश नहीं होता, यह तो स्पष्ट है। माने कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य के साथ कभी मिलित नहीं हो सकता, दोनों द्रव्य पृथक पृथक ही रहते हैं। आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में रहता है, पुद्गल का जो पुद्गल की पर्याय है उस तरह से है। इसलिए इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दर्शन दान चारित्र पुद्गल द्रव्य में नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कुछ संबंध नहीं। पुद्गल द्रव्य में कुछ भी प्रक्रिया बचे तो जीव के जीव में कुछ होता नहीं। घर का नाम हो जाए तो भी दीपक ऐसे ऐसे रहता है, या तो दीपक बुझ जाए तो भी घर ऐसे ऐसे रहता है। इसलिए जीव और पुद्गल की प्रसन्नता होने से दर्शन दान चारित्र पुद्गल द्रव्य में नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो दर्शन दान चारित्र का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शन दान चारित्र का घात दूसरी बात होने से अवश्य ही घात हो जाएगा। अभी ये प्रकरण अच्छा हो इससे क्या कहना चाहते हैं कि क्योंकि यदि ऐसा न हो दर्शन दान चारित्र पुद्गल द्रव्य में नहीं है, अगर ऐसा न हो तो दर्शन दान चारित्र का घात होने पर दर्शन दान चारित्र का घात होने पर उसका मतलब क्या है कि जब तक दर्शन दान चारित्र रूप अपना परिणमन नहीं चलता और अज्ञान दशा चलती है तो अज्ञान दशा को दर्शन दान चारित्र का घात बोला जाता है। यदि जो अज्ञान दशा दर्शन दान चारित्र का घात होने पर माने कि अज्ञान दशा चलती हो तो पुद्गल का घात और पुद्गल द्रव्य के घात होने से दर्शन दान चारित्र का घात, अज्ञान दशा चले तो पुद्गल नहीं जाए और पुद्गल चला जाए तो उसकी दर्शन दान चारित्र का घात माने की अज्ञान में रहे। माने की समझ लो कि वहां पुद्गल है, अभी जीव एक गति में से दूसरी गति में चला गया है तो पुद्गल कहाँ रह गया, जीव चला गया तो उसके साथ संबंध तो है ही नहीं। अपनी अज्ञान दशा के साथ अपने को संबंध है, एक दूसरे के साथ संबंध कभी बन सकता नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि क्योंकि यदि ऐसा न हो दोनों प्रथक प्रथक न हो तो दर्शन दान चारित्र का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात हो जाएगा, अज्ञान दशा में पुद्गल द्रव्य बचेगा ही नहीं, पुद्गल द्रव्य का घात हो जाएगा। अगर दर्शन दान चारित्र रूप अपना परिणमन नहीं होता है और अज्ञान दशा चलती है तो अज्ञान दशा में पुद्गल रहेगा नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं। और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शन दान चारित्र का जो विवाह होने से अवश्य ही घात हो जाएगा। पुद्गल द्रव्य अगर समझ लो कि पुद्गल द्रव्य का घात हो गया तो दर्शन दान चारित्र का दुर्विवाद अवश्य ही घात हो जाएगा। इसलिए दोनों की सत्ता पृथक पृथक है, अज्ञान भाव से एकत्व बुद्धि चलती है, वो अज्ञान भाव छूट जाता है और ज्ञान भाव प्रकट हो जाता है तो उसको पृथक पृथकता है वो समय प्रकार से भाषित हो जाती है। निर्णय की भूमिका में पहले जीव और पुद्गल भिन्न है ऐसा उसको पता चलता है, बाद में वो निर्णय आने के बाद में उसका जब समय परिणमन होता है तब तो उसको वास्तव में ये प्रकट प्रकट करता है, ऐसा ज्ञान और भान हो जाता है। ऐसा होने से जीव के जो जितने गुण है ये सब परद्रव्यों के नहीं है, यह हम भलीभांति देख के मानते हैं। ऐसा होने से जीव के जो जितने गुण है वो परद्रव्य में नहीं है, ऐसा हम देखते मानते हैं, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी जीव के गुणों का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर जीव के गुण का घात होना दुर्विवाद होने से अवश्य ही घात हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि जीव के कोई गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है। अभी ये तो जीव की और पुद्गल की प्रथम सत्ता थी, अज्ञान भाव अपने में चलता है और अज्ञान भाव से मोहराज्य की उत्पत्ति होती है और पुद्गल की सत्ता सब पुद्गल में है, ना तो पुद्गल से जीव का अज्ञान भाव को संबंध है ना तो जीव का अज्ञान भाव का पुद्गल से संबंध है। वो निमित नैमित शब्द की चर्चा आती है वो अलग चर्चा है, यहाँ जीव का द्रव्यगुण पर्याय पृथक और पुद्गल का द्रव्यगुण पर्याय पृथक, ये दोनों की पृथकता बताने की ये बात है। अभी क्या कहते हैं कि प्रस्ताव यदि ऐसा है तो समय दृष्टियों को विषयों में राग किस कारण से होता है, ऐसा प्रस्ताव है। अभी अज्ञान दशा समझ लो जीव की अपनी चैतन्य सत्ता में स्मरण करके अपनी चैतन्य सत्ता में अहम करके अभी उसका सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसको हो गई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, टाइम हो गया है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रकरण अपन लेंगे दोपहर को, अभी 11:05 हो गई है, लेना हो तो कोई बात नहीं है मगर दोपहर को लेना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है इनको, कि अपन ने कल भी थोड़ी बात की थी, एक तो निर्णय की भूमिका जीव को आती है, ज्ञानियों की वाणी जीव सुनता है और उसकी विचार दशा एकदम जो ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं ऐसे उसकी विचार दशा एक चालू हो जाती है अंदर में, क्योंकि सम्यक दृष्टि पुरुष जो विश्लेषण करते हैं तो सम्यक दृष्टि पुरुष मात्र उपदेश नहीं देते हैं, उपदेश के साथ वो उपाय भी बताते हैं कि तेरा द्रव्य तो ऐसा है, तेरा शुद्ध परमात्मा तो ऐसा है, तू भगवान आत्मा स्वीकारी तो ऐसा है, मगर उसके पास जाना, उसका अभेद परिलंबन तक पहुंचना, उसका उपाय क्या है, वो उपाय सम्यक दृष्टि बता सकता है। जैसे कुछ गुरुदेव जी है वो अपने को उपाय बताते हैं कि इसका उपाय क्या है, उपदेश तो दे दिया मगर वो प्रवृत्ति हम कैसे करें, उस तरफ उस तक कैसे हम पहुंचे, कहां हम अटकते हैं और कब कैसे हम उधर पहुंच जाए, इसकी पूरी विधि कुछ गुरुदेव जी बताते हैं कि पहले में पहले तो एक विचार दशा चलती है जीव की, वो ज्ञान में सब ये सब चलता है ना, सब कार्य ज्ञान ज्ञान से चलता है। श्रद्धा का कार्य क्या है कि एकदम प्रकृति करना, यही मैं अहम, यही मैं श्रद्धे, मैं श्रीकार परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, श्रद्धा का इतना ही कार्य होता है। उससे पहले की जो भी गतिविधियां है वो ज्ञान उसको एकदम तैयार करके देता है, जब वो ज्ञान तैयार करके उसको देता है तब ही श्रद्धा का कार्य शुरू होता है। तो ज्ञान में क्या होता है कि ज्ञान को असाधारण मूल है चिंता, तो वो ज्ञायक को बराबर समझ सकता है, दूसरे गुणों जितने भी गुण है केवल श्रद्धा गुण भी है, श्रद्धा चारित्र सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व जो भी गुण है उसमें किसी में जानने की शक्ति नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है गुण, श्रद्धा को पता नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं किस तरफ प्रबंध नहीं हूं, चारित्र को पता नहीं है मैं क्या हूं, वो सब ज्ञान जानता है, इसलिए ज्ञान है वो जागरूक देवता है, वो ही जीव का जीवन का निश्चय करा सकता है। तो ज्ञान है वो ही सचमुच में उसी का ही माध्यम से ज्ञायक तरफ भी पहुंच सकता है, उसकी बहुत अच्छी विधि है, अपन थोड़ा टाइम इसमें लगेगा 15-20 मिनट, अपन झूठे को ले लेंगे, यानी कि ज्ञान असाधारण गुण है, वो जागता देव है, जीव का जीवत्व का निश्चय कराता है, निर्णय के काल में ज्ञान और श्रद्धा प्रकट हो जाता है, ज्ञान में परोक्ष अनुभूति चालू हो जाती है, तब भी श्रद्धा में राग में से श्रद्धा करती रहती है, ऐसा सब प्रकरण है, सब पर ले कुछ गुरुदेव जी ने ये बात का बहुत खुलासा किया है। 17-18 गाथा का प्रवचन, वो 81-82 गाथा, 52-53 गाथा, ये 356-363 गाथा, 19 गाथा, ये सब गाथाएं बहुत प्रयोजनभूत है, 79-79 गाथा, 71 गाथा, ये सब गाथाओं में ये सब प्रयोग भी बताइए, प्रयोग कैसे करना, बात तो समझ में आ गई मगर प्रयोग कैसे करना, उसकी विधि हम लेते हैं।